समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
मौसम के देखो इशारे, कितने हसी है नजारे, फूलों पे शबनम की मोती रब ने जमीन पे उतारे। सोचो तुम्हें, चाहो तुम्हें, देखो तुम्हें तो दुनिया हसी लगती है।
प्रभात कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। इस प्यारी सी सुबह में इस साल मार्च तो उम्मीद से ज्यादा सुहावनी रही है और अप्रैल में भी ऐसा मौसम मिलना वाकई बोनस जैसा लग रहा है। आमतौर पर अप्रैल आते आते धूप तेज होने लगती है, लेकिन इस बार मौसम जैसे थोड़ा मेहरबान हो गया है। कभी बादल, कभी बारिश और बीच बीच में ठंडी हवा। और आज आकाशवाणी स्टूडियो में सुभद्रा रामचंद्रन के साथ इसी मौसम के साथ प्यारी सी बारिश जो है वो हल्की हल्की बूंदे बाहर हो रही हैं और हम आकाशवाणी स्टूडियो में बैठे हैं आपके साथ आधे घंटे का ये कार्यक्रम पेश करने के लिए।
सुभद्रा, sometimes it's good, sometimes it's bad, and there's nothing you can do about it except enjoy it. So Farhat, we wish all our listeners a very happy, pleasant Wednesday and begin our program Aaj Savere with some news headlines, right?
जी बिल्कुल सुभद्रा, और वैसे भी मौसम विभाग ने आज भी पूरे दिन बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं सबसे पहले मुख्य समाचारों का। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान होर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों का आवागमन जारी रखने की अनुमति देता है तो वो अमरीका और ईरान के बीच प्रस्तावित 2 सप्ताह के युद्ध विराम के लिए सहमत है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों को द्विपक्षीय युद्ध विराम पर सहमत होना चाहिए। ट्रंप ने दावा करते हुए कहा कि अमरीका अपने सैन्य लक्ष्य हासिल कर चुका है और संघर्ष सुलझने के करीब है। दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची ने कहा है कि अगर ईरान पर हमले बंद कर दिए जाते हैं तो ये युद्ध विराम के लिए सहमत है। उन्होंने बताया कि 2 सप्ताह की अवधि के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित आवागमन संभव होगा। इस बीच ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने ऐतिहासिक जीत का दावा करते हुए कहा है कि अमरीका ने ईरान की 10 सूत्रीय योजना को स्वीकार कर लिया है। और इस बीच 2 सप्ताह की युद्धविराम समझौते के बाद वैश्विक तेल की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। शेयर बाजारों में भी उछाल आया है। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 से नीचे गिर गई है। करीब 16% की गिरावट के साथ ये $92 प्रति बैरल पर आ गई है।
External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will hold a meeting with Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman this afternoon in New Delhi. Mr. Rahman arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. During his visit, Mr. Rahman is also expected to meet the National Security Advisor Ajit Dobhal, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri. This marks the first visit to New Delhi by a Bangladeshi minister since the BNP-led government took office in February.
और विधानसभा चुनाव की तैयारियों की अगर बात की जाए तो निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान एजेंटों के बैठने की व्यवस्था के संबंध में कोई नया दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। आयोग ने मीडिया द्वारा प्रसारित कुछ संदेशों का संज्ञान लिया है जिनमें यह दावा किया गया है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के मतदान एजेंटों को मतदान के दिन मतदान केन्द्रों के अंदर बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदान एजेंटों से संबंधित सभी मौजूदा दिशा निर्देश बिना किसी बदलाव के लागू रहेंगे।
The Reserve Bank of India, RBI, will announce its bi-monthly monetary policy statement today. RBI Governor Sanjay Malhotra will announce the decisions taken by the Monetary Policy Committee, MPC, in its first meeting of the financial year 2026-27 at 10 this morning. Led by the RBI Governor, the 6-member MPC are deliberating on key aspects such as interest rates, inflation outlook, the growth projections since Monday. According to experts, RBI is likely to keep the benchmark policy repo rate unchanged at 5.25% in the April Monetary Policy Review meeting as the West Asia crisis is likely to push up inflation.
Aur Subhadra, Krishano se juda samachar jo विषय हम आपको बताने हैं कि मध्य प्रदेश के रायसेन में 11 से 13 अप्रैल तक 3 दिन का कृषि महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि इसमें केवल फसलों पर ही ध्यान केंद्रित नहीं किया जाएगा, बल्कि दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन, किसान उत्पादक संगठन आधारित विपणन और ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका के अवसरों पर भी ध्यान दिया जाएगा। महाकुंभ का उद्देश्य किसानों के लिए आय के कई मजबूत स्रोत तैयार करना है।
The 25th All India Water Sports Cluster, organized by the Indo-Tibetan Border Police, ITBP, is set to begin today at Vasai in Tehri, Uttarakhand. The 5-day event will last till the 12th of this month. ITBP Inspector General Manu Maharaj informed the 19 teams from across the country will participate in 52 events, including canoeing, rowing and kayaking. Over 440 personnel from state police and paramilitary forces will participate, including 130 women and 310 men. The prestigious national event will be inaugurated by Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami. Director General of ITBP, Shatrujit Kapoor and other senior officers will also remain present at the inaugural ceremony.
और ISSF की बात की जाए तो स्पेन के ग्रेनेडा में आयोजित ISSF विश्व कप में कल भारतीय निशानेबाज पलक गुलिया और मुकेश नेलावली ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में जूनियर विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। फाइनल में दोनों ने कुल 487.7 अंक हासिल किए। ISSF विश्व कप में नेलावली का ये पहला पदक था। इससे पहले इन्होंने क्वालिफाइंग राउंड में अच्छा प्रदर्शन किया और दूसरे स्थान पर रहकर पदक के लिए क्वालिफाई किया। चीन ने रजत पदक जबकि हंगरी ने कांस्य पदक
As part of our series, People's Padma on Akashvani, in our upcoming episode, we speak to Ms. S.G. Sushila Ma, a social worker who will be honored with Padma Shri.
Thanks to selected me, Padma Shri Award.
This ashrama has been running 2 formal schools from standard 1 to 10, the primary and the high school. Children don't even know how to write the basic alphabets. She has brought them up. Then they have gone on to become doctors, they have gone on to become engineers. She has won the National Child Welfare Award in 1985 and then the Babasaheb Ambedkar Handloom Award and then for the Child Welfare, Central Social Welfare Board, she has taken 3 national awards.
To listen to the conversation, tune in to 100.1 Akashvani Gold today morning at 9:10 a.m. You can also listen to it on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel.
और श्रोताओ, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम रुक करेंगे महानगरों की खबरों का। सबसे पहले सुभद्रा से जानेंगे चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद में क्या है खास।
Yes, Farhad, let's start with Chennai's news. Senior BJP leader, Union Minister Piyush Goyal alleged that 3 lakh families in Tamil Nadu were denied benefits under the Housing for All scheme because the state government did not provide the union government with the names of the beneficiaries. He said that this meant nearly 12 lakh people missed access to homes with toilets, cooking gas, electricity and digital connectivity. He also pointed out that investigations were underway to identify those involved in corruption in the Jal Jeevan mission, including whether the chief minister was directly responsible. The surveillance teams deployed across all assembly constituencies along with enforcement agencies are engaged in 24/7 monitoring and have seized precious metals, drugs, liquor, narcotics and cash amounting to ₹463 crore. Going to Bengaluru news now, Chief Commissioner Maheshwar Rao on Monday directed officials to procure 1 pothole filling machine for each city corporation under the Greater Bengaluru Authority GBA to speed up road repairs. At a coordination meeting, he stressed that all 5 corporations should use these machines for quick automated pothole repairs. He also ordered immediate restoration of roads dug up by departments, mandating permissions through the MARCS system and cost recovery for non-compliance. Rao said GAIL gas applications must be cleared quickly with timely restoration. Going over to Hyderabad now. The government of Telangana has officially declared cancer a notifiable disease across the state to establish a robust surveillance system for monitoring the rising burden of non-communicable diseases. According to a GO issued by the Health, Medical and Family Welfare Department, all healthcare facilities, including government and private hospitals, diagnostic laboratories and clinics, are now legally mandated to report diagnosed cancer cases within 1 month. This initiative aims to create a centralized uniform cancer registry to estimate incidence and prevalence accurately, while facilitating evidence-based policy formulation and better resource management for rehabilitative care. The Mehdi Nawaz Jung Institute of Oncology and Regional Cancer Center in Hyderabad has been designated as a center of excellence responsible for validating data and coordinating with the National Cancer Registry. And Farah, over to you now for rest of the news.
जी, दिल्ली मुंबई कोलकाता के लिए रोक कर लेते हैं. सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है. आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की घोषणा की है. नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मौजूदा ढांचों को मान्यता दी जाएगी, वहीं आगामी निर्माण कार्य में नगर निगम के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा. श्री मनोहर लाल ने कॉलोनियों को नियमित करने के निर्णय के साथ वहां के निवासियों को अपनी संपत्तियों का पंजीकरण करवाने के लिए आगे आने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा है.
2019 के अंदर पीएम उदय नाम से हमने मालिकाना हक देने के लिए एक्ट बनाया. हमने आकर के अब उसको रेगुलेशन का जोड़ा है. आज से वो रेगुलेशन के सारे नियम लागू करके अब लोग आगे आकर अपने मालिकाना हक की रजिस्ट्री भी कराएंगे, और किसी को नया मकान बनाना है तो उसके लिए भी विधिवत एमसीडी के माध्यम से उसका प्लान वो तैयार करके उनको दिया जाएगा, ताकि नए मकान में बना सके. एमसीडी के नॉर्म्स के हिसाब से नया कंस्ट्रक्शन चाहे पूरा करना है, तोड़ के बनाना है, अथवा अपने पहले वाले कंस्ट्रक्शन में कुछ एडिशन करना है, वो सब एमसीडी के नॉर्म्स के हिसाब से ही करेंगे.
वहीं दिल्ली सरकार ने प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए व्यावसायिक एलपीजी की उपलब्धता बढ़ा दी है. सरकार ने इनके लिए प्रतिदिन 19 किलोग्राम के बराबर क्षमता वाले 180 सिलेंडरों के बजाय 360 सिलेंडर आवंटित किए हैं. दिल्ली के खाद्य और आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि स्वास्थ्य और सरकारी संस्थानों, होटलों, रेस्टोरेंट, ढाबों और अन्य आवश्यक सेवाओं सहित सभी क्षेत्रों में 19 किलोग्राम के बराबर क्षमता वाले 6,000 से अधिक सिलेंडरों की दैनिक उपलब्धता है. इसे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्राथमिकता दी जा रही है. वहीं राजधानी के भारत मंडपम में 12वीं इंडिया रबड़ एक्सपो 2026 का शुभारंभ हो गया है. 4 दिन तक चलने वाली इस एक्सपो में देश विदेश के उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे. ये एक्सपो 10 अप्रैल तक आयोजित होगा. ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 400 से अधिक वैश्विक प्रदर्शक और 45,000 से ज्यादा आगंतुकों के शामिल होने की संभावना है. और अब महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्यव्यापी मेरा गांव स्वस्थ गांव अभियान का शुभारंभ किया. इस अभियान का लक्ष्य जमीनी स्तर पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करके और निवारक स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव लाना है. वहीं महाराष्ट्र सरकार ने सभी शहरी स्थानीय निकायों में नागरिकों की वसीयतों को स्थायी रूप से संरक्षित करने के लिए नामित संरक्षक नियुक्त करने का निर्णय लिया है. कल जारी एक सरकारी प्रस्ताव के अनुसार नगर आयुक्त, नगर परिषद और नगर पंचायत के मुख्य अधिकारी संरक्षक के रूप में कार्य करेंगे और एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन कानूनी दस्तावेजों की सुरक्षा और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे. और अब पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं. पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला ने जिला मजिस्ट्रेटों को सख्त निर्देश जारी करते हुए चेतावनी दी है कि राजनीतिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल पाए जाने वाले सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. हालिया अधिसूचना के अनुसार ऐसे किसी भी कर्मचारी के राजनीतिक गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी. इस आदेश का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से सुनिश्चित करवाना है. और आज सवेरे में वक्त है महानगरों के मौसम का हाल जानने का. जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि राजधानी दिल्ली में कल से ही तेज बारिश हो रही है और आज भी मौसम विभाग ने दिन भर बारिश का अनुमान व्यक्त किया है. तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं अगर बात की जाए मुंबई की, तो आसमान साफ रहेगा. न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा. और कोलकाता में लेकिन बारिश और आंधी के साथ तूफान की संभावना है. न्यूनतम न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो ये तो था दिल्ली मुंबई कोलकाता के मौसम का हाल। सुभद्रा, चेन्नई बेंगलुरु और हैदराबाद में कैसा रहेगा मौसम?
यस फरहा, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद द पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 27 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 36। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव मेनली क्लियर स्काई, द मिनिमम टेम्परेचर वाज 22 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 35 डिग्रीज। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद हेज, द टेम्परेचर विल हैव अ बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस एंड अ मैक्सिमम ऑफ 38 डिग्री सेल्सियस।
और श्रोताओं, आज है 8 अप्रैल 2026 और हम बात कर रहे हैं एक ऐसी पहल की जिसने भारत में छोटे व्यवसायों और स्वरोजगार को नई पहचान दी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसे लोकप्रिय रूप से पीएमएमवाई कहा जाता है, इस योजना की शुरुआत आज ही के दिन 8 अप्रैल 2015 को की गई थी, जिसका उद्देश्य उन छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों तक वित्तीय सहायता पहुंचाना था जो पहले औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से बाहर थे। ये पहल आर्थिक समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। इस योजना से पहले छोटे व्यापारियों को अक्सर ऊंचे ब्याज दरों पर अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेना पड़ता था। मुद्रा योजना ने इस स्थिति को बदलते हुए बैंकों, नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनी और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के माध्यम से बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराए। योजना के तहत व्यवसाय की जरूरत के अनुसार 3 श्रेणियों में ऋण दिए जाते हैं, शिशु 50,000 तक, किशोर अगर है तो 5 लाख तक और तरुण 10 लाख तक।
The Pradhan Mantri Mudra Yojana represents a significant milestone in India's journey towards financial inclusion and entrepreneurship development. By offering collateral-free loans, the scheme has enabled millions of individuals to start or expand small businesses in manufacturing, trading, services and agriculture-allied sectors, thereby strengthening local economies. Since its launch, crores of loans have been sanctioned, with a large share benefiting women entrepreneurs, highlighting the scheme's role in inclusive economic growth and social empowerment. PMMY stands as a strong example of how access to finance can empower people, generate employment opportunities, and strengthen the grassroots economy of the country while encouraging self-reliance and innovation.
और सुभद्रा भाई, देश दुनिया में हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं, तो सबसे पहले क्या है आपके पास?
यस, 1484 पोर्चुगीज एक्सप्लोरर डियोगो काओ रिटर्न टू लिस्बन आफ्टर एक्सप्लोरिंग द अफ्रीकन कोस्ट एंड बिकमिंग द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच द कांगो रिवर।
और आज के दिन अगस्त सन 1820 की बात की जाए तो ग्रीस के मेलोस द्वीप पर विश्व प्रसिद्ध प्राचीन मूर्ति वीनस डी मिलो की खोज हुई।
1831 दिस डे इंडियन सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन रॉय अराइव्ड इन इंग्लैंड टू एडवोकेट फॉर इंडियन सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स।
1857 में भारतीय सैनिक मंगल पांडे को ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह में भूमिका निभाने के कारण फांसी दी गई।
1904 फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम साइंड द एंटेंट कॉर्डियल एग्रीमेंट, सिग्निफिकेंटली इंप्रूविंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस।
1913 में अमेरिका में संविधान के 17वें संशोधन के तहत सीनेटरों के प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था लागू हुई।
1921 दिस डे भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त कैरिड आउट द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग इन दिल्ली टू प्रोटेस्ट कॉलोनियल लॉस।
और वर्ष 1974 में बेसबॉल खिलाड़ी हैंक आरून ने 715वां होम रन बनाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया।
And finally, 1993, Ellen Ochoa launched aboard the Space Shuttle Discovery, becoming the first Hispanic woman in space.
और सन 2023 में द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई 30 में उड़ान, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर में सुखोई 30 MKI विमान में उड़ान भरी।
Welcome back to Our Savory Friends, and moving over to some births and deaths today. 1834, 8th April, Jose Alvarez de Azevedo, titled the patron of education for the blind and creator of the first school for the blind in Brazil, was born. Jose was born blind, was known to be extremely intelligent and endlessly curious as a child. He investigated the world around him through touch. His family sent him to the Royal Institute of Blind Young People in Paris, the only school specialized in education for the blind, from age 10 to 16. Azevedo attended the school at a time when it was experimenting with the newly introduced Braille writing system. And after returning to Brazil in 1850, he opened the country's first school for the blind. Today marks Jose's 192nd birth anniversary and is also the National Braille Day.
और अब हम बात करेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में। आनंद मठ जैसी रचनाओं से युवाओं को अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संगठित होने की प्रेरणा इन्होंने दी और वंदे मातरम के माध्यम से आजादी की चेतना को स्वर दिया। राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र जी ने अपनी कृतियों के माध्यम से देशवासियों के हृदय में सदैव जीवित रहे। बंकिम ने साहित्य के क्षेत्र में कुछ कविताएं लिखकर प्रवेश किया। उस समय बंगला में गद्य या उपन्यास कहानी की रचनाएं कम लिखी जाती थी। बंकिम ने इस दिशा में पथ प्रदर्शक का काम किया और 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुर्गेश नंदिनी नाम का उपन्यास लिखा। इस ऐतिहासिक उपन्यास से साहित्य में उनकी धाक जम गई। फिर इन्होंने बंग दर्शन नामक साहित्यिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया। रविन्द्रनाथ ठाकुर बंग दर्शन में लिखकर ही साहित्य के क्षेत्र में आए। वो बंकिम को अपना गुरु मानते थे। उनका कहना था कि बंकिम बंगला लेखकों के गुरु और बंगला पाठकों के मित्र हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र जी का नाम इतिहास में युगों युगों तक अमर रहेगा, क्योंकि ये गीत उनकी एक ऐसी कृति है जो आज भी प्रत्येक भारतीय के हृदय को आंदोलित करने की क्षमता रखती है।
April 8, 1924, birth anniversary tributes to Pandit Kumar Gandharv. Original name was Shivputra Siddharamaiah Komkali. He was a leading intellectual among Hindustani classical musicians. And of course, Kumar's strongest point was an ability to place his own distinctive interpretation on anything that he sang, and a very wide repertoire that included standard rags, rare and complicated rags, folk songs, particularly from the Malwa region of Madhya Pradesh, bhajans, whose status as a form of classical music was greatly elevated by his contributions, and Marathi stage songs, Natya Sangeet.
पंडित कुमार गंधर्व को सन 1977 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आज उनके राग मध्य सुरजा, अहि मोहिनी, सहेली, तोड़ी, बिहड़ भैरव, लगन गंधार, संजरी और मालवती जैसे कई राग संगीतकारों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार और अभ्यास किए जाते हैं। कुमार गंधर्व एक प्रसिद्ध भारतीय गायक थे जिन्होंने कई संत कवियों के पदों का गायन किया। इनमें सूरदास और कबीरदास के पद भी प्रमुख हैं।
जग दर्शन का मेला दास कबीर हर के गुण गावे वाहर को पारन पावे वाहर को पारन पावे गुरु की करुणी।
और अब हम याद कर रहे हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विद्वान और सुप्रसिद्ध सरोद वादक शरण रानी को। वे प्रथम महिला थीं जिन्होंने सरोद जैसे मर्दाना साज को संपूर्ण ऊंचाई प्रदान की। इसी कारण उनके प्रशंसक उन्हें सरोद रानी के नाम से पुकारते थे। शरण रानी का देहांत उनके 80वें जन्मदिन के दिन पहले ही हो गया था। शरण रानी 20वीं सदी की म्यूजिक लेजेंड मानी जाती रही हैं। पद्म भूषण और पद्मश्री से नवाजी जा चुकी शरण रानी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की सांस्कृतिक राजदूत कहकर सम्मानित किया था।
And friends, Pablo Picasso, one of the most influential artists of the 20th century, passed away this day in France at age 91. Between 1901 and 1904, Picasso painted essentially monochromatic, somber paintings in shades of blue and blue-green, which came to be known as Picasso's Blue Period. Today, paintings from that period are some of his most popular works, but at that time, he had difficulty selling them. And also, friends, this is really interesting. Not many people know that Picasso's full name honors a variety of his relatives and saints, and is quite a mouthful. Let me start reading his name. पाब्लो डिएगो होजे फ्रांसिस्को दे पॉला हुआन नेपो मुसेनो मरिया दे लॉस रेमेडियोस सिप्रियानो देला सांटिस्मा ट्रिनिडाड स्क्लिटिको रुइजी पिकासो एंड फरहद वुड यू लाइक टू चेंज योर नेम आल्सो
नहीं बिल्कुल नहीं और हम आपको बता दें कि पिकासो की ओरिजिनल पेंटिंग्स करोड़ों डॉलर में बिकती है तो ये बहुत ही जो है एक मामूली बात नहीं है ये नीलामी में एक बार उनकी पेंटिंग 100 मिलियन से ऊपर तक गई थी तो अब आगे बढ़ते हैं हम याद कर रहे हैं मंगल पांडे को भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी योद्धाओं के रूप में इनका नाम लिया जाता है और इनकी क्रांति की ज्वाला से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बुरी तरह हिल गया था मंगल पांडे की शहादत ने भारत में पहली क्रांति के बीज बोए थे भ्रादेश पर विजय और सिख युद्ध की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने भारतवर्ष पर राज्य करने के सपने देखे होंगे लेकिन उन्हें क्या पता था कि सन 1857 का वर्ष उनकी आशाओं पर तुषारपात का वर्ष सिद्ध होगा
Birth anniversary tributes to lady jazz singer Carmen McRae, one of the greatest singers of jazz, finding the depth of feeling in the lyrics of the song she interpreted. An accomplished pianist who in her early career accompanied herself, she occasionally returned to the piano later in her career. McRae performed many times at the Monterey Jazz Festival, the North Sea Jazz Festival in Netherlands and Montreux Jazz Festival in Switzerland, where she shared the stage with Dizzy Gillespie and Phil Woods. She was forced to retire for health reasons in 1991. Carmen here doing the world-famous Take Five of Dave Brubeck.
Won't you stop and take a little time out with me? Just take five. Stop your busy day and take the time out to see I'm alive. Though I'm going out of my way just so I can pass by each day, not a single word do we say. It's a pantomime and not a play. Still I know our eyes often meet. I feel tingles down to my feet when your smile that's much too discreet sends me on my way.
Birthday of Steve Howe, guitarist, vocalist of one of the most popular progressive rock bands from England. Yes, Howe has been playing the instrument since age 12, has earned the title of Best Overall Guitarist in Guitar Player magazine 5 years in a row, and also the very first rock guitarist to get inducted into the Guitar Player Hall of Fame.
और श्रोताओं अब हम याद करें हैं प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत को शक्ति सामंत ने हावड़ा ब्रिज अमर प्रेम आराधना कटी पतंग कश्मीर की कली अमानुष जैसी यादगार फिल्में बनाई आराधना फिल्म में राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर सुजीत कुमार फरीदा जलाल और अशोक कुमार नजर आए म्यूजिक SD बर्मन का था तो आइए सुन लेते हैं फिल्म आराधना से ये प्यारा सा गीत फिल्म में शर्मिला टैगोर और उत्तम कुमार की अदाकारी ने कहानी को भी खूब सराहा तो आइए सुन लेते हैं अमानुष फिल्म से ये प्यारा सा गीत
दिल है ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा बर्बादी की तरफ है समोड़ा एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा
And friends, the quiet one who rocked the loudest, yes friend, the enigmatic co-founder of popular rock outfit Guns N' Roses, rhythm guitarist Izzy Stradlin celebrates his birthday today. While Axl Rose and Slash were in the spotlight, it was Izzy's gritty riffs, rebellious spirit, unforgettable songwriting that powered hits like Sweet Child of Mine, Paradise City, Mr. Brownstone. A quiet, mysterious, hugely talented, Izzy became the glue that held the world's wildest rock band together. And the rebel who walked away at the peak of their fame in 1991, his own compositions, solo one you're listening to right now, it's called Goddess Says, playing in the background. Happy birthday, Izzy Stradlin.
walk in, walk right out my door. I didn't try to follow, 'cause I knew the score.
और श्रोता, अंत में चलते चलते आपको बता दें, दिनेश कुमार शुक्ल का भी आज जन्मदिन है और उनकी एक प्यारी सी कविता है, अब कहां संभव बिना आवाज का संगीत, बिना भाषा की कविता, बिना हवा का तूफान, बिना बीज के फल, बिना युद्ध का समय नहीं, उस तरह संभव नहीं हो पाता अब संसार। और इसके साथ ही वक्त चला है आपसे अनुमति लेने का।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।